नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पंजाब के आदमपुर वायुसेना केंद्र का दौरा किया, बहादुर योद्धाओं और सैनिकों से बातचीत की, कहा भारत सशस्त्र बलों का हमेशा आभारी रहेगा। राज्य सरकार ने पौड़ी जिले के उपजिला चिकित्सालय थलीसैंण में ढांचागत सुविधाओं के विकास और आधुनिक चिकित्सा उपकरणों की खरीद के लिए करीब 214 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के 10वीं और 12वीं कक्षा के परिणाम घोषित। और चंपावत जिले के लोहाघाट में आयोजित जिला स्तरीय कौशलम एक्सपो में विभिन्न विद्यालयों के छात्रों ने अपने कौशल का प्रस्तुतीकरण दिया। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आशुतोष उनियाल, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सवेरे पंजाब में आदमपुर वायुसेना केंद्र का दौरा किया और वीर जवानों के साथ बातचीत की। बातचीत के दौरान श्री मोदी ने जवानों के शौर्य की सराहना की और उनका मनोबल बढ़ाया। प्रधानमंत्री ने वीर जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत माता की जय सिर्फ उद्घोष नहीं है, यह देश के हर उस सैनिक की शपथ है जो माँ भारती के सम्मान में जान की बाजी लगा देता है। उन्होंने कहा कि भारत माता की जय मैदान में भी गूंजती है और मिशन में भी।
भारत माता की जय ये सिर्फ उद्घोष नहीं है, ये देश के हर उस सैनिक की शपथ है जो माँ भारती की मान मर्यादा के लिए जान की बाजी लगा देता है। ये देश के हर उस नागरिक की आवाज है जो देश के लिए जीना चाहता है, कुछ कर गुजरना चाहता है। भारत माता की जय मैदान में भी गूंजती है और मिशन में भी।
प्रधानमंत्री ने कहा कि जब भारत के सैनिक मां भारती की जय बोलते हैं तो दुश्मन के कलेजे कांप जाते हैं। जब हमारी मिसाइलें सनसनाती हुई निशाने पर पहुंचती है तब दुश्मन को सुनाई देता है भारत माता की जय।
जब भारत के सैनिक मां भारती की जय बोलते हैं तो दुश्मन के कलेजे कांप जाते हैं। जब हमारे ड्रोन दुश्मन के किले की दीवारों को ढहा देते हैं, जब हमारी मिसाइलें सनसनाती हुई निशाने पर पहुंचती हैं, तो दुश्मन को सुनाई देता है भारत माता। जब हम सूरज उगा देते हैं तो दुश्मन को दिखाई देता है भारत माता की जय। जब हमारी फौजें न्यूक्लियर ब्लैकमेल की धमकी की हवा निकाल देती है तो आकाश से पाताल तक एक ही बात गूंजती है, भारत माता की जय।
राज्य सरकार ने पौड़ी जिले के उपजिला चिकित्सालय थलीसैण में ढांचागत सुविधाओं के विकास और आधुनिक चिकित्सा उपकरणों की खरीद के लिए करीब 214 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। इससे थलीसैण, वीरोंखाल, पोखड़ा और पाबो के आंशिक क्षेत्र की लगभग 1 लाख की आबादी को उच्च स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिलेगा। साथ ही लोगों को हर बीमारी के उपचार के लिए हायर सेंटर का रुख नहीं करना पड़ेगा। विभागीय अधिकारियों के अनुसार उपजिला अस्पताल बनने से स्वास्थ्य केंद्र में विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती सुनिश्चित की गई है, जिसमें बाल रोग विशेषज्ञ, दंत रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग, स्त्री रोग और हड्डी रोग विशेषज्ञ, फिजिशियन, सर्जन, महिला चिकित्सा अधिकारी, इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर, पैथोलॉजिस्ट आदि शामिल हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि थलीसैण उपजिला चिकित्सालय के लिए स्वीकृत धनराशि से अस्पताल में अवस्थापना कार्यों के साथ ही चिकित्सा सुविधाओं को भी अपग्रेड किया जाएगा, जिसका लाभ थलीसैण सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की 1 लाख से अधिक आबादी को मिलेगा। प्रदेश में चारधाम यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह बना हुआ है। अब तक 5.5 लाख से अधिक श्रद्धालु चारों धाम के दर्शन कर चुके हैं। प्रदेश सरकार ने चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे ने बताया कि श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए सरकार ने पंजीकरण के लिए एक अच्छी पहल की है। उन्होंने बताया कि अगर कोई श्रद्धालु 25 या उससे ज्यादा की संख्या में एक साथ यात्रा करते हैं तो वे जहां ठहरे हैं वहीं पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण करने वाली टीम स्वयं पहुंचकर उनका पंजीकरण करेगी।
देखिए, इस बार हमने चार धाम यात्रा के दृष्टिकोण से काफी अहम कदम उठाए हैं, और विशेषकर जो हमारा जो श्रद्धालु है उसको किसी तरह की दिक्कत न हो, उसको किसी तरह का हरासमेंट न हो, उस कारण ही हमने इस साल आधार बेस्ड रजिस्ट्रेशन भी शुरू किया है ताकि उसको आसानी से मिले। और जो लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे थे उनके लिए हमने ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था ऋषिकेश, हरिद्वार और विकास नगर में की है। और इतना ही नहीं, अगर 25 से बड़ा ग्रुप है तो जहाँ पे वो लोग रुके, जिस आश्रम में, जिस होटल में रुके हैं, वहां पे भी हम अपनी टीमों को भेज के रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, यानी वो ऑन कॉल बेसिस पे रजिस्ट्रेशन टीम को बुला सकते हैं। इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, विशेषकर हरिद्वार में और देहरादून के ऋषिकेश में।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं और 12वीं कक्षा के परिणामों की घोषणा कर दी है। इस वर्ष 12वीं कक्षा के 88.39% विद्यार्थियों ने बोर्ड परीक्षा पास की, जो पिछले वर्ष की तुलना में 0.41% अधिक है। 12वीं कक्षा के परिणामों में इस बार भी लड़कियों ने बाजी मारी है। वहीं 10वीं कक्षा के 93.66% विद्यार्थियों ने बोर्ड परीक्षा पास की। 10वीं की परीक्षा में भी लड़कियों ने फिर लड़कों से मारी है। 95% से अधिक लड़कियों ने परीक्षा पास की, जो कि लड़कों के मुकाबले 2.37% अधिक है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बोर्ड परीक्षा परिणामों में उत्तीर्ण सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि यह सफलता विद्यार्थियों के कठिन परिश्रम, समर्पण और अटूट संकल्प का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन विद्यार्थियों का परिणाम उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं रहा, वे निराश ना हों। यह जीवन का अंतिम पड़ाव नहीं है, यह स्वयं को और बेहतर बनाने, आत्ममंथन करने और नए सिरे से आगे बढ़ने का अवसर है। चंपावत के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान लोहाघाट में जिला स्तरीय कौशलम एक्सपो का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विभिन्न विद्यालयों के छात्रों ने अपने कौशल का प्रस्तुतीकरण दिया। संस्थान के प्राचार्य दिनेश सिंह खेतवाल ने बताया कि स्थानीय संसाधनों के उपयोग कर कैसे उद्यमशील मानसिकता का विकास किया जाता है, इसको लेकर यह प्रदर्शनी लगाई गई है। जिला समन्वयक डॉ. कमल गहतोड़ी ने बताया कि कौशलम एक्सपो में जिले के बिजनेस सपोर्ट फंड द्वारा आच्छादित 22 माध्यमिक विद्यालयों के 70 छात्र छात्राओं ने भाग लिया।
कौशलम कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है बच्चों में उद्यमशीलता की मानसिकता पैदा करना, और भविष्य में, क्योंकि हम जानते हैं कि सभी बच्चों के लिए जॉब तो उपलब्ध होने हैं नहीं भविष्य में, तो हम अभी से ये लेकर चल रहे हैं कि बच्चे पढ़ लिख कर यदि स्वयं का कोई जॉब या स्वयं का कोई उद्यम स्थापित करें तो उनकी जीविकोपार्जन बहुत अच्छे से चलेगी और आने वाली पीढ़ी बड़ी सुखद होगी। तो इस उद्देश्य को साकार करते हुए व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम को स्टेट लेवल पर SERT और उद्यम लर्निंग फाउंडेशन मिलकर संचालित कर रहे हैं, और इसके तहत हमारे जनपद में इस समय 22 विद्यालय हैं जो BSF यानी बिजनेस सपोर्ट फंड से आच्छादित है। तो आज 22 विद्यालय यहां पर सम्मिलित हुए हैं और 22 विद्यालयों के लगभग 70 बच्चों ने यहां प्रतिभागिता की है।
उत्तरकाशी जिले में स्थित गौमुख ट्रैक खुलने के बाद से अब तक 1000 से अधिक ट्रैकर्स, पर्वतारोही और पर्यटक गंगोत्री ग्लेशियर के दर्शन कर चुके हैं। पार्क प्रशासन के अनुसार भोजबासा में भी ट्रॉली का संचालन शुरू कर दिया गया है। गंगोत्री नेशनल पार्क के गेट 1 अप्रैल को खुल गए थे, लेकिन उसके बाद गौमुख ट्रैक पर करीब 8 विशालकाय ग्लेशियर आने के बाद वहां पर आवाजाही शुरू नहीं हो पाई थी। पार्क प्रशासन ने करीब 25 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद ट्रैक को आवाजाही के लिए सुचारू करवाया। कनखू बैरियर चौकी इंचार्ज वंदरोगा राजवीर रावत ने बताया कि अब तक 2 पर्वतारोहियों का दल गंगोत्री ग्लेशियर की केदार डोम और सतोपंथ चोटी के आरोहण के लिए गया है। वहीं ट्रैकर्स के जाने से पहले पॉलिथिन, सैटेलाइट फोन आदि की सघन जांच करने के बाद ही पार्क के नियमानुसार उन्हें भेजा जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पंजाब के आदमपुर वायुसेना केंद्र का दौरा किया, बहादुर योद्धाओं और सैनिकों से बातचीत की, कहा भारत सशस्त्र बलों का हमेशा आभारी रहेगा। राज्य सरकार ने पौड़ी जिले के उप जिला चिकित्सालय थलीसैण में ढांचागत सुविधाओं के विकास और आधुनिक चिकित्सा उपकरणों की खरीद के लिए करीब 214 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के 10वीं और 12वीं कक्षा के परिणाम घोषित और चंपावत जिले के लोहाघाट में आयोजित जिला स्तरीय कौशलम एक्सपो में विभिन्न विद्यालयों के छात्रों ने अपने कौशल का प्रस्तुतीकरण दिया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।